नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं। कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं। कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, नहीं एक भी नहीं। रब को जो चाहता हो, नहीं एक भी नहीं। करता हो जो भलाई, करता हो जो भलाई, नहीं एक भी नहीं। कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं। सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है। अच्छाई क्या करोगे, ईमान से बचोगे, सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है। कोई उसके जैसा, नहीं एक भी नहीं। चाहे हो कोई कैसा, चाहे हो कोई कैसा, नहीं एक भी नहीं। जो अपनी जान दे दे, नहीं एक भी नहीं। सबके गुनाह ले ले, सबके गुनाह ले ले, नहीं एक भी नहीं। कोई नहीं है अच्छा, नहीं।
तो कौन सा ऐसा नाम है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कि जिस नाम के वसीले से हमें नजात मिलती हो।
हर पाप से छुड़ाता, अपना लहू बहाता, दुनिया को माफ करता। यसु यीशु ही है बचाता।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और विशेष करके उन मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इन दिनों हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम दान के विषय में देख रहे थे और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 7 पद से अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आज आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के आत्मिक आँखों को, उनके कानों को, हृदय और विचारों को आप प्रदान करें, एकाग्रता पन दे ताकि प्रभु ये आपके वचन को सुनकर आशीषों को प्राप्त कर सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान कीजिए। इस समय फिर से बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पिछले अध्ययन में हम दान के बारे में देख रहे थे। पौलुस दान देने के विषय में कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है कि वे हर बातों में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो वे पौलुस से रखते हैं उसमें बढ़ रहे थे। वैसे ही वे इस दान के काम में भी जो वे यरूशलेम के कलीसिया के लिए एकत्र कर रहे थे उसमें बढ़ते जाएं। और उसने उन्हें धन्यवाद का एवं प्रोत्साहन का उदाहरण भी दिया कि मकीदुनिया की कलीसियाओं ने किस प्रकार अपने कष्टों एवं अपनी दरिद्रता में रहते हुए भी दान दिया। तो आइए देखें मसीही दान देने का अनुग्रह। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। पौलुस उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि उनका विश्वास महान है, वे गवाही देने में सर्वोपरि हैं, उनमें ज्ञान है और वे यत्नशील भी हैं। उनके मन में पौलुस अन्य प्रेरितों के लिए प्रेम है, इस कारण वह उनसे कहता है कि वे इस अनुग्रह में भी अपना विकास करें। किस अनुग्रह में? दान देने के अनुग्रह में। आगे लिखा है दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 8 पद में, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। ध्यान दीजिए, पौलुस के कहने का अर्थ है कि दान देना आज व्यवस्था पालन नहीं है या एक प्रथागत अभ्यास था या अनुष्ठान नहीं है। मैं जानता हूं कि अनेक बाइबल टीकाकार दशमांश देने का समर्थन करते हैं। निसंदेह दशमांश पुराने नियम का एक आधारभूत नियम था। यदि आप सावधानी पूर्वक अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि पुराने नियम में इसराइल 3 दशमांश देता था। 1 दशमांश सरकार के लिए था, जैसे आज हम कर देते हैं या भरते हैं। अतः दशमांश मसीही विश्वासियों की अनिवार्यता नहीं है। पौलुस कहता है आज्ञा की रीति पर तो नहीं। उसके कहने का अर्थ था कि वह कुरिन्थ के विश्वासियों को व्यवस्था का संदर्भ नहीं दे रहा है। जी हाँ, पौलुस दान के अनुग्रह में अपने 2 कारण को प्रकट करता है। पहला, दूसरों के उत्साह से। यह मकीदुनिया के विश्वासियों का उदाहरण है। दूसरा कारण है तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए। यह आज भी सच है कि जेब में रखी चेकबुक मनुष्य के प्रेम की परख है। यह एक विश्वासी का सबसे अधिक संवेदनशील परिप्रेक्ष्य है। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यदि आप दान देने के लिए एक मानदंड की खोज में हैं, तो वह यही है मसीह यीशु। वह धनवान होकर भी गरीब बना। उसने संसार में आकर दरिद्रता का स्थान चुना। कल्पना कीजिए कि स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में उसका आगमन, बेतलहम में जन्म, नासरत में पालन पोषण और यरूशलेम की शहरपनाह के बाहर क्रूस की मृत्यु और कब्र के अंधकार में रखा जाना। वह धनवान था, परंतु आपके और मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि मैं और आप धनवान बने, जीवन पाएं। दूसरा कुरिन्थियों 8:10 में लिखा है, इस बात में मेरी सलाह यही है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है जो एक वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। ध्यान दीजिए, इससे विदित होता है कि एक वर्ष पूर्व कुरिन्थ के विश्वासियों ने इस दान के प्रति शपथ खाई थी। अब यहाँ निर्धारित धन राशि देने की प्रतिज्ञा का विवाद विषय उठता है। कुछ विश्वासियों का मानना है कि विश्वासियों को दान के विषय वचनबद्ध नहीं होना चाहिए, परंतु हमें यह बोध हो कि हम अन्य सब बातों के लिए शपथ खाते हैं, तो परमेश्वर के लिए दान देने में शपथ क्यों ना खाएं? हम अपने घर का किराया देने की शपथ खाते हैं, कोई सामान किस्तों पर खरीदते हैं तो हम शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। अतः मैं कहता हूं कि हम परमेश्वर के कार्य के निमित्त दान देने के लिए शपथ पत्र पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8:11 में लिखा हुआ है, इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। पौलुस कहता है कि उन्हें अपना वचन पूरा करना है, परंतु यह आज्ञा नहीं है। हमें शपथ खाने की आज्ञा नहीं है, तथापि इस पद का अर्थ है कि हम शपथ खाएं तो हमें उसे पूरा भी करना है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8:12 में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। यहाँ ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात है, दान उसके ही अनुसार दिया जाए जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। और मन की तैयारी से, यदि आपके पास नहीं है तो उतना अधिक दान न दें। पहला कुरिन्थियों की पत्री में हम देखते हैं, जहां पर मैंने एक उदाहरण भी दिया था, क्योंकि यह उदाहरण इस सिद्धांत की एक अति उत्तम प्रेरणा है, मैं इसे दोहराना चाहता हूं। मेरी कलीसिया जहां मैं जाता हूं, एक सदस्य कोका कोला की फैक्ट्री का मालिक था। उसके पास बहुत भूमि थी। वह वहां शिकार खेलने और मछली पकड़ने के लिए जाता था। वह मुझसे प्रायः एक प्रश्न पूछता था, आप दशमांश देने पर प्रचार क्यों नहीं करते हैं? एक दिन मैंने उससे कह दिया, मुझे दशमांश पर प्रचार क्यों करना है? उसने कहा, यह बाइबल में व्यक्त अनिवार्यता है। मैंने उसकी बात रखते हुए कहा, हाँ, यह पुराने नियम की दान विधि है, परंतु अनुग्रह के अधीन मैं दशमांश देने में विश्वास नहीं करता। उसने पूछा, तो फिर आपके विचार में दान कैसा होना चाहिए? मैंने उससे यह पद सुनाया, अपनी अपनी पूंजी के अनुसार। मैंने उससे कहा कि इस मुद्रास्फीति के युग में भी कोका कोला चल रहा है और आपका निर्वाह बहुतायत से पूर्ण है, परंतु हमारी कलीसिया में कुछ सदस्य दशमांश देने में असमर्थ हैं। मैं नहीं मानता कि परमेश्वर उन्हें दशमांश देने पर बाध्य करता है, परंतु कुछ लोग आर्थिक संकट से बाहर हैं और उन्हें अपनी पूंजी के अनुसार देना चाहिए। उन्हें केवल दशमांश देकर ही नहीं रुक जाना है, जी हाँ, संभवतः आधा देना चाहिए। इस व्यक्ति ने फिर कभी नहीं कहा कि मुझे दशमांश पर प्रचार करना चाहिए। उसने समझ लिया था कि जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। दशमांश देना पुराने नियम का विधान था, परंतु मेरे विचार में अच्छी आय वाले विश्वासियों को दशमांश से कम नहीं देना चाहिए। आज विश्वासियों की आय अच्छी है, अतः उन्हें दशमांश से अधिक देना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8:13 में हम पढ़ते हैं, यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। ध्यान दें, पौलुस के कहने का अभिप्राय है कि किसी पर आर्थिक बोझ न डाला जाए। दूसरा कुरिन्थियों 8:14 में लिखा है, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटती में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। परमेश्वर ने आपको शायद एक अच्छा घर, एक कार, सब साधन आदि से संपन्न किया है। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि परमेश्वर आपसे आशा रखता है कि आप प्रभु के काम में दान दें? आप संभवतः मेरे उस जागीरदार दोस्त के समान दशमांश पर ही रुक जाते हैं। वह चाहता था कि मैं दशमांश पर प्रचार करूं कि उसका मन उसे सराहे। मेरा उत्तर सुनने के बाद शायद वह दशमांश देकर शांति नहीं पा रहा होगा जो देने में सामर्थ्य है। वे अवश्य दें, परंतु हम किसी पर बोझ न डालें। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। पौलुस मूसा के युग में जंगल में मन्ना एकत्र करने का उदाहरण देता है। उन्हें प्रतिदिन का आहार भी एकत्र करना था। यदि कोई आवश्यकता से अधिक मन्ना एकत्र करता तो क्या होता? अगले दिन पूरा का पूरा मन्ना सड़ जाता था। यह परमेश्वर की योजना थी कि वे आवश्यकता से अधिक का लालच न करें। जी हाँ, अध्याय 9 पद 6 में हम देखेंगे, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। मेरे विचार में परमेश्वर आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप उसके साथ व्यवहार करते हैं। मेरे विचार में परमेश्वर के पास वही खाते हैं। वह हमें व्यवस्था के अधीन नहीं बांधना चाहता है, क्योंकि वह हमारे दान को अनुग्रह, मनोवेग और देने की लालसा बनाना चाहता है। हमारा दान देना एक आनंद का अनुभव होना है। आपको यह कहने योग्य होना है, आपको कहना है कि भाई साहब, आपका प्रवचन सुनना मुझे अच्छा लगता है। वह संसार के अति उत्तम सौभाग्य की चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि दान देने से हमें आनंद प्राप्त होता है। आपको यह पागलपन सा लगेगा, परंतु पौलुस यही कहता है। मित्रों, हम देखेंगे मसीही दान की व्याख्या। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय के 16 पद में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है। धन्यवाद, जो मूल भाषा यूनानी में अनुग्रह लिखा है। यद्यपि धन्यवाद अधिक उचित प्रतीत होता है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हो भी उतना ही अधिक अच्छा अनुवाद है। पौलुस कहता है कि उसने तीतुस को दान एकत्र करने के लिए भेजा था, परंतु उसका मन भी अनुग्रह से पूर्ण था। तीतुस भी पौलुस के समान मनोवेग रखता था कि यरूशलेम के पवित्र जनों के लिए दान एकत्र करे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय 17 से 19 पद में लिखा हुआ है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसियाओं में फैला हुआ है, और इतना ही नहीं, परंतु वह कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया है कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। देखिए, तीतुस और उसके साथियों के मन में यह अनुग्रह समा गया था। दान परमेश्वर की महिमा के निमित्त था। मेरे मित्रों, हमारा दान जैसा भी हो परमेश्वर की महिमा के निमित्त होना चाहिए, न कि दिखावे के लिए, न कि बड़कपन के लिए। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 8 अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है, हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष न लगाने पाए। ध्यान दें, पौलुस के कहने का अर्थ है कि वे उनके दान के साथ सत्यनिष्ठ रहेंगे। तब आगे हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 8 उसके 21 पद में, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। यह प्रभु की सेवा में एक संवेदनशील क्षेत्र है। अनेक मसीही संस्थाएं और कलीसियाएं सेवा में विपुल दान का प्रचार करने में विशेषज्ञ हैं, परंतु उस धनराशि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इस विषय में लगभग नहीं या बहुत कम चर्चा की जाती है। परमेश्वर के वचन के प्रचार में काम आ रहा है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए और उसके फलों का विस्तृत ब्यौरा भी रखा जाना चाहिए। एक या दो घटनाएं नहीं है। हमें उन संस्थाओं पर भरोसा होना चाहिए जिन्हें हम दान देते हैं कि वे सत्यनिष्ठ हैं और सच्चाई से सेवा नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं। यदि हमें किसी संस्था पर संदेह हो तो हमें उसके लिए दान नहीं देना चाहिए। हमें स्मरण रखना है कि यह संसार बुरा है और इसमें धर्म के ठग भी हैं। हमें सावधान रहना है कि हम किसे दे रहे हैं और इसका लेखा मुझे और आपको देना होगा। महान प्रेरित पौलुस भी कहता है, जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्य के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। स्पष्ट प्रकट किया जाना है कि दान किस काम के लिए उसी में काम में आए। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा हुआ है, हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। ध्यान दीजिए, वे तीतुस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वह सच्चा व्यौरा देगा। वे पौलुस पर भरोसा कर सकते हैं जो उन्हें उनके दान के परिणाम स्पष्ट करेगा। उनका पैसा एक ही मनुष्य के हाथों नहीं दिया जाएगा। आगे लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय के 24 पद में, अतः अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। मेरे मित्रों, पौलुस उनके प्रेम का प्रमाण जानना चाहता था। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो बातों से बढ़कर कुछ करें। दान देना प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव है। आज अधिकांश विश्वासियों के लिए मैं चिंतित हूँ। वे उस युवक की नाई हैं जिसने अपने मित्र लड़की को लिखा, मैं तुम्हारे लिए समुद्र पार कर सकता हूँ, अथा नदी पार कर सकता हूँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत पार कर सकता हूँ, जलते रेगिस्तान की रेत पर चल सकता हूँ। अंत में वह टिप्पणी लिखता है, यदि बुधवार की रात वर्षा ना हुई तो मैं तुमसे भेंट करने अवश्य आऊंगा। इसी प्रकार हम मसीह से अपने प्रेम की बातें करते हैं परंतु उसके लिए बलिदान नहीं दे पाते। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को उत्साहित करता है कि वे अपने प्रेम का प्रमाण प्रस्तुत करें कि वे सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने लोगों से प्रेम करते हैं। क्या आज आप अपना प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं? मेरे प्रियो, यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 9 से देखेंगे, और इसका विषय है यरूशलेम के गरीब पवित्र जनों के लिए दान। इस अध्याय का विषय वही है जो अध्याय 8 का है। अध्याय 8 में दान देने का अनुग्रह व्यक्त किया गया था और इस अध्याय में भी मसीही दान की चर्चा की गई है। तो आइए देखें मसीही दान की व्याख्या। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 1-4 पद में हम पढ़ते हैं, अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अखिया के लोग एक वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसा ही तुम तैयार रहो। ऐसा न हो कि यदि कोई मकिदुनिया वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार न पाए तो हो सकता है कि इस भरोसे के कारण हम यह नहीं कहते हैं कि तुम लज्जित हो। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है कि उसने उनके दान के विषय में मनुष्यों में बड़ी डींग मारी है और यदि वहां आने पर उसे दान एकत्र किया हुआ नहीं मिला तो वह बहुत निराश होगा। जमा किया दान किसी भी कलीसिया की सच्ची परख है। मैं आत्मा से भरी जोशीली कलीसिया में जाता हूँ। वे महान कलीसियाएं हैं जिनके बारे में मुझे बताया जाता है कि वे उदारता से दान देते हैं। मैं ऐसी कलीसियाओं में भी गया हूँ जो आत्मिक रूप से मृतक हैं। मैंने वहाँ देखा है कि उनका दान भी अधिक नहीं है। वे दान देने में भी मृतक हैं। दान का परिणाम एक अच्छा स्थिति मापक यंत्र है। अब इन कुरिन्थ विश्वासियों ने प्रण किया था कि वे यरूशलेम के विश्वासियों के राहत कोष में दान देंगे। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक विश्वासी द्वारा किया गया प्रण उसके और प्रभु के बीच होता है, अतः कुछ भी करने या देने का वचन प्रभु के साथ वाचा बांधना है। मैं एक धनवान व्यक्ति को जानता हूँ, उससे किसी ने पूछा, आप इतना अधिक दान देकर भी संसार में धनवानों में गिने जाते हैं, यह कैसे संभव है? उसका उत्तर था, प्रभु उंडेलता है और मैं निकालता हूँ। जी हाँ, परमेश्वर की बाल्टी मेरी बाल्टी से बड़ी है। मेरे मित्रों, देने में हम परमेश्वर को नहीं हरा सकते हैं। जितना हम देंगे उतना अधिक परमेश्वर मुझे और आपको देगा। लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और यही कारण है कि वे कंजूसी करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 9:5 में लिखा है, इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें, कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के साथ फल के समान तैयार हों। यहाँ आप देखेंगे कि दान को उदारता का फल कहा गया है, अर्थात दान एक वदान्य भेंट है जो मन की क्रियाशील परमेश्वर के अनुग्रह का प्रमाण है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप कितना दान देते हैं, कैसे दान देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे कहता है कि हम उदारता से दान दें, कुड़ कुड़ करके नहीं, आनंद से, हर्षित होकर के दें, ताकि परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सके। मेरे प्रियो, यदि आज तक आपने परमेश्वर को दान देना आरंभ नहीं किया है या इस बात को आपने नहीं समझा है, आज समझ जाइए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए दान दें, उसके सेवकाई के लिए दान दें, अधिकांश कलीसियाओं को दान दें, ताकि उसके द्वारा से परमेश्वर को महिमा मिले, आपको आशीष मिले। वह चाहता है कि हम में से प्रत्येक विश्वासी ईमानदारी से उसके लिए दान दें, सिर्फ दशमांश पर ही न रुक जाएं, परंतु हमारी आमदनी से बढ़कर उसे दें। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में दान देने की बातों को सीखा है और इस पर और भी आप गंभीरता से विचार करेंगे। आज के इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु ही है बचाता, हर पाप से छुड़ाता, अपना लहू बहाता, दुनिया को माफ करता, करता हो माफ ऐसे नहीं एक भी नहीं, देता नजात ऐसे, देता नजात वैसे नहीं एक भी नहीं, ऐसा खुदा का बेटा नहीं एक भी नहीं। दुश्मन को प्यार देता, दुश्मन को प्यार देता नहीं एक भी।